मैदे के लिए खुराक के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैदे का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है?
देखिए, हमारे जिस्म में मैदा जो है एक बड़ा हॉलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, लेकिन ये इसका काम खाली नहीं है, इसका काम बहुत भरपूर है। और ये आपके पेट का बड़ा एक हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई करता है, और इसके बहुत से जो हैं फंक्शंस हैं, जैसे कि एंजाइम्स, लॉट्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो बनाता है, जो हर तरह की खुराक के को हज़म करने के लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुदरत पैदा की हुई है कि ये हज़म कर सकते हैं। जैसे कि अगर एमिलेज है, लाइपेजेज हैं, प्रोटीएजेज एंजाइम्स हैं, फिर इसके अलावा जो ये आपके खाना खान चुबाने के बाद, यानी कि पहला तो खाना आपके मुँह में चुबाया जाता है, उसके बाद जो सेकेंड हैंडलिंग है वो आपके मैदे
मैदा
के
का
अंदर
होता है।
आती है, तो मैदा जो है फर्दर इसको इतना हज़म करता है खाने को कि ये आंतड़ियों से आराम से जो है वो उसके मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है, उसकी गज़ाइत है, वो
बदन को मिल
आंतड़ियों
जाए।
से जो है एब्जॉर्ब होके तो आपके जिस्म को लगे। तो लेकिन इसका जो पीएच है वो नहायत ही कम है, जैसे कि 1.5 to 2, यानी कि तेजाबियत होती है इसके
बहुत
अंदर।
ज़्यादा
तो ये तेजाबियत जो है ये कुदरती तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि इसके अंदर हर तरह की खुजा जो है वो हज़म हो सके।
तो अब जो लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है, ग़िज़ा जो है हज़म नहीं कर पाते हैं, और जो है वो चीज़ जो आप जैसे आके आपने कहा ग़िज़ाइत है वो उनके बदन को नहीं मिल पाती, इसकी वजह क्या होती है?
देखिए, इसकी बुनियादी वजह बीमारी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपने आपके खुराक का हिस्सा क्या है। जैसे कि अब मैदे में अगर हम अगर ब्रॉडली देखें तो हमारे पास खाने में हर तरह की जो है वो हिस्से आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं। तो आपने अपने खुराक का जिस तरह से आप तरीका आपका है इस्तेमाल करने का, वही मैदे के रिस्पॉन्स को बनाती है। अगर आपने खुराक अच्छी इस्तेमाल की है, मैदा भी उसको अच्छी तरह से हज़म करेगा और अपने जिस्म के साथ जिस्म को लगाएगा। जैसे कि अगर आप न देखें, हम दूध दूध दही से शुरू करें तो दही बेहतरीन एक चीज़ है, प्रोबायोटिक्स का सोर्स है। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? देखिए, हमारे जिस्म के अंदर हर जगह पर छोटे छोटे जरासीम हैं, और वो जरासीमें जो हैं वो आपकी सेहत के लिए भी कई अच्छे हैं, ख़ास तौर पे आंतड़ियों में, जिन्हें
जी
हम कहते हैं फ्लोरा के नाम पर कहते हैं। और वो फ्लोरा जो हैं वो तभी उनकी सेहत है जब अगर आपकी खुराक में एक बैलेंस जो है प्रोबायोटिक्स का सोर्स है। तो दही जो है वो बेहतरीन इस हवाले से है कि वो मिजाज जो है मैदे का वो मुतदल रखता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होने देता,
जी
और फिर आंतड़ियों तक जो है वो तेजाबियत नहीं जाती, और आंतड़ियों का जो फ्लोरा है वो मेंटेन रहता है।
दही का इस्तेमाल रखा जाए
जी,
ज़्यादा से ज़्यादा।
दही का इस्तेमाल। फिर अगर हम देखें तो हमारे फाइबर आ जाते हैं, फाइब्रस फूड बहुत सा है, फाइब्रस में ज़्यादातर सब्जियां और फल आ जाते हैं। अब फाइबर का क्या है? फाइबर जो है एक हमारी जितनी भी आंतड़ियां और हमारा मैदा जो है उनमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी कि इस तरह से वो मूव करते हैं। उस मूवमेंट का मकसद क्या है कि वो एक हेल्प करते हैं, फिजिकल हेल्प देते हैं खाने को, खुराक को हज़म होने में,
जी
और जो एंजाइम है उनको रिलीज़ होने में, और उनको खुराक के साथ मिक्स होने में और फूड के एब्जॉर्प्शन में। तो फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब फाइबर का सोर्स क्या है? फाइबर आपको नाशपाती में, फलों में, सब्जियों में, इन तमाम चीज़ों में आपको फाइबर देंगे। तो मैदे की सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, मतलब फल लेते हैं, तो उसका
जी
गूदा और उसका फाइबर जो है वो
वो
वेस्ट ना करें। जैसे
जी
माल्टा है, माल्टे के जूस पीने से बेहतर है उसको पूरा खाना।
खाएं।
जी, इसी तरह अगर आप नाशपाती में देखें तो नाशपाती में सॉर्बिटॉल है। सॉर्बिटॉल मतलब फाइबर के साथ हट कर भी उनकी खुराक के कुछ हिस्से हैं, गजाइत कोई एलिमेंट्स हैं। जैसे कि सॉर्बिटॉल का बता रही हूँ कि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अल्टीमेटली स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट हो जाता है, मतलब जो कब्ज़ है, कब्ज़ कुशा हो जाती है। तो इस तरह से कई फाइबर के एलिमेंट हैं जो कि हमारी ना सिर्फ आंतड़ियों के लिए, उनके फंक्शन के लिए अच्छे हैं, बल्कि वो कब्ज़ कुशा भी हैं।
आपने बात की थी कि नाशपाती से जो है मैदा थोड़ा ढीला हो जाता है, जैसे जिन लोगों को कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जिन लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन होता है, एक तो किन खानों की वजह से हो जाता है, पहले हमें ये बता दें।
देखिए, खाने में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, पानी का कम इस्तेमाल है, फाइबर का कम इस्तेमाल है, और हाई प्रोटीनियस डाइट है, जैसे गोश्त पे ज़्यादा है, या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं और सादी खा रहे हैं बग़ैर उसके। कई लोगों का इस्तेमाल जो है वो रोटी पराठे और गोश्त का होता है,
जी
उसमें कहीं भी सब्ज़ी नहीं है, कहीं भी दही नहीं है, कहीं भी फाइबर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि आप खाना का स्टार्ट जो है पहले पानी से करें, जो कि सुन्नत भी है, पानी एक गिलास अच्छा पी लें और उसके बाद खाना खाएं, और आहिस्ता से खाएं और चबा के खाएं। फिर दरमियान में, खाने के दरमियान में सलाद का इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आप गोश्त भी खा रहे हैं तो आपका जो एपिटाइज़र है सलाद का हो, सलाद में खीरा है, मूली है, जो भी सलाद के पत्ते हैं, जिस तरह भी है वो आप सलाद का इस्तेमाल करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब है एंड मुमकिन है कि कोई मतलब अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर पानी का इस्तेमाल जो है वो खुराक में नहीं है, या फिर आप हमारे पास जो एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है वो इसबगोल है। अगर इसबगोल जो है वो आप गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, या रोगने बादाम जो है वो गर्म दूध के साथ रात को इस्तेमाल कर लें तो वो भी बेहतरीन है, कब्ज़ कुशा है। इसके अलावा फलों में जो है, जैसे बताया था नाशपाती है,
जी
फिर केला जो है वो भी बेहतरीन कब्ज़ कुशा है।
आमतौर पर कहते हैं केला जो है पेट टाइट करता है, तो यानी वो दोनों में काम करता है।
हमने सुना है कि
हाँ
वो एक अदद और दो अदद के अगर आप ऑड नंबर्स में खाते हैं तो वो
अच्छा, ये मैंने नहीं सुना
मतलब
था।
अगर आप ऑड नंबर में खाते हैं तो कब्ज़ होती है, अगर आप इवन में खाते, ये हमने बड़ों से सुना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
नहीं,
जो केला है वो बेहतरीन कब्ज़
यानी
कुशा
पेट
है
के लिए अच्छा
जी,
है।
पेट को नरम करता है, गैस को खारिज करता है। लेकिन देखिए, इसके अलावा जो बहुत बेहतरीन चीज़ है वो कार्बमिनेटिव्स का इस्तेमाल है। अब कार्बमिनेटिव्स जो हैं वो ये हमारे बरेसगीर के एरिया में बहुत इस्तेमाल होते हैं, चाइना में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका हमारे जो एरिया में इस्तेमाल होने का तरीका है वो ज़रा गलत है। यानी कि हमने अपने मसाले और जायके तेज करने हैं तो हमने कार्बमिनेटिव का इस्तेमाल करना है। अब कार्बमिनेटिव में बहुत बड़ी रेंज है,
जैसे
जैसे कि कहवा है, पुदीना है, धनिया और इलायची, सौंफ, दारचीनी, ये तमाम चीज़ें कार्बमिनेटिव्स के अंदर है। लेकिन ये इतनी बेहतरीन चीज़ है, मतलब ये आपकी जो मेदे में बनने वाली गैस है, जैसे कि
पुदीना
सौंफ है,
दालचीनी,
सौंफ
हाँ
बच्चों में जो छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं उनकी कॉलिक पेन, जो उनको पेट एकदम स्पैज्म हो जाती है, गैस इकट्ठी हो जाती है, उससे
जी
दर्द होता है, तो ये गैस खारिज करता है सौंफ। इसके अलावा अगर आप कार्डम देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ ये मैदे की गैस को ख़त्म करते हैं, एंजाइम्स को जितने भी हैं उनको रिलीज़ करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, एंटी टॉक्सिन्स हैं, फिर
जी
इसके
जी
अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनके बहुत से फ़ायदे हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल कहवे के तौर पर किया जाए वो बेहतरीन है, बजाय कि इनको ओवर कुक करके मसाले तेज़ करके तो करें। अगर आप देखें चाइना में तो वो लोग इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो सूप्स में करते हैं, और सूप जो है वो ओवर कुक्ड नहीं है,
जी
तो इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनका जो है वो बेहतरीन, मैदा जो भी अच्छी है उनके मैदे भी बेहतरीन काम करते हैं
पानी में दम करके अगर
जी।
लिया जाए। अब जो है उस तरफ आते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिपेशन पे बात की, आमतौर पे दो चीज़ें होती हैं, या पेट जो ढीला हो जाता है, तो इसके बारे में बताएं, इसके इसके क्या क्या, यानी कौन कौन से खाने जिसकी वजह से ये हो जाता है
अच्छा देखिए, अगर लूज मोशन आते
लूज
हैं तो
मोशन।
कम से कम 3 दिन इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि और उसमें जो आपकी एक रेमेडी है, जो कि जितनी भी डायरिया की क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और सब कुछ है और रिसर्च प्रूवन है, कि अगर आपको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं तो एटलीस्ट 3 दिन आप ना वेट करें। अगर उसमें उस टाइम में अगर आपको कोई सवियर किस्म का, आप कहीं गिर नहीं गए, तो उस 3 दिन में इंतज़ार करने का मकसद क्या है कि अगर पेट में कहीं ज़्यादा हो गया है, कीड़े वगैरह वो आपकी स्टूल से जो है वो निकल जाएं,
अच्छा
और उसमें जो आपकी ट्रीटमेंट है उसका वो ORS का फॉर्मूला है, यानी आपने शहद लेना है, शहद नीम गर्म पानी में शहद डालें, उसमें एक लीमू डालें और थोड़ा सा नमक, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करें और वो पिएं, तो वो बेहतरीन है। एक तो मैदे को मुतदल करेगा, सारे आपके मैदे और निज़ाम हज़म को बैलेंस कर देगा, और जो अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई फजूल मादा है, वो
जी
सारा आपका जो है स्टूल से पास आउट हो जाएगा। तो अगर 3 दिन के बाद नहीं अगर आता है, आराम नहीं आता, और अगर आप समझ रहे हैं कि इस 3 दिन में बहुत बुरी हालत होगी, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और कोई एंटीबायोटिक जो है वो आपको प्रिस्क्राइब कर दें।
एक सवाल आया, पहले मैं वो पूछ लूँ फिर आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है, हमें भेजते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के क्या नुकसानात हैं मेदे के लिए, और ये हमें अथर साहब भेजते हैं स्कर्दू बल्तिस्तान से।
देखिए, कोलेस्ट्रोल जो है वो पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ना उसको बदल के रख देता है, बर्बाद कर देता है। और इसमें जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं वो भी उसके मैदे के मिजाज को ख़राब कर देता है। तो इसमें मतलब आपको पहले ही ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेनी पड़ती है। आप शुगर नहीं ले सकते, आप बहुत से फल हैं जो फाइबर है वो नहीं ले सकते हैं। आपको खुराक जो है चुन के इस्तेमाल करनी होती है, तो उससे मैदा भी कमज़ोर हो जाता है, आंतड़ियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। और हमने देखा है कि उन लोगों में जो एक जर्नल वीकनेस जो है, कमज़ोरी जो है, वो होना शुरू जाती है। इसका बेहतरीन यही है इलाज कि आप पूरी कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको बेहतर करें, ताकि आप खुराक मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें और आपका जो है जिस्म में जो कमज़ोरी आ रही है जर्नली वो ख़त्म हो सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लूकोज और डायबिटिक के पेशेंट, डायबिटीज़ के जितने पेशेंट हैं वो फिर एक लेटर एज में देखते हैं कि उनके मैदे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं।
अच्छा, एक और सवाल आया है यहाँ पे, एजाज तनवीर साहब पाकिस्तान से पूछते हैं कि ग़ज़ा खाने के थोड़ी देर बाद जो है जो ग़ज़ा हज़म नहीं होती है वो वापस गले की तरफ आने लगती है, और जो उनकी खाने की जो नली है उसमें जलन होना शुरू हो जाती है, तो इसके अस्बाब क्या है और इसका इलाज क्या है?
देखिए, जो इन्होंने अलामत बताई है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ है, जिसे हम गर्ड कहते हैं। उसमें तेजाबियत, मैदा तेजाबियत ज़्यादा बनाना शुरू हो जाता है, जिससे मैदे का मुंह खुला रहता है और वो फिर जो मैदे के तेजाब की बबल्स होते हैं या तेजाबियत के जो वेपर्स होते हैं वो खाने की खुराक की नाली में आते रहते हैं और वो उसको जलन करते रहते हैं, जिसको हम हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खाने के जो पोर्शन है उसको कम कर लें, यानी कि ऐसा नहीं खाना खा के और बहुत देर तक बैठना, यानी कि बहुत ज़्यादा। अभी आप देखें, अगर आप सुबह एक हैवी खाना लेते हैं, जैसे सुन्नत है कि सुबह का नाश्ता आप
भारी
करें,
होना चाहिए,
भारी
हाँ,
करें, क्योंकि आपने सारे दिन में आपको
काम करना है।
मुख्तलिफ काम में आपका खाना बहुत तरीके से हजम हो जाएगा और मैदा तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर आप वही खाना भारी जो है दोपहर में और रात में खाते हैं, तो डेफिनेटली जो है तेजाबियत बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कई दफ़ा आप दिन में कई हिस्से काम के आपके बैठ के हैं, बैठ कर आप कर रहे हैं, तो उससे वक्त के बढ़ने के साथ साथ आपका मैदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें चाहिए कि वो अपने खाने के एक तो औकात जो हैं वो देख लें, और बहुत ज़्यादा गर्म खाने को अवॉइड करें, और अपने खाने के पोर्शन में देखें कि वो खा क्या रहे हैं। जी
अच्छा, एक सवाल आया है बड़ा मज़ेदार, समीरा सांझीपुरा से पूछती हैं कि नूडल्स जो होती हैं वो बच्चों के लिए सही है, बच्चों के मैदे के लिए?
देखिए, नूडल्स जो हैं, नूडल्स ने अपनी खुद बताएं कि जो कि उसके बनाने के लिए वो कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो नूडल्स जुड़ते नहीं हैं। यानी अगर आप देखें नूडल्स को बॉईल करते हैं और उसके बाद जब आप बनाते हैं तो नूडल्स सेपरेट लेते हैं, और यही ये जो टेक्सचर है नूडल का, ये एक्चुअली बच्चों को अट्रैक्ट करता है,
जी
बच्चों को भी और बड़ों को भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसका जो न, जो इसका एक जिसकी वजह से जी टेक्सचर मेंटेन रहता
जी
है, वो केमिकल्स मैदे के लिए बेहतर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। उससे हम देख रहे हैं बहुत लोग जो है गैस का, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ नहीं है।
कम से कम
इसको,
इस्तेमाल
हाँ,
करें।
इसको जितना अवॉइड करें तो उतना बेहतर है, लेकिन हम देख रहे हैं ये पूरे बरेसगीर में बहुत
बढ़ते
ज़्यादा
जा रहे
फैल
हैं,
गया है। लेकिन देखिए, चाइनीज़ के बेहतरीन पार्ट जो है वो नूडल्स हैं, उनके नूडल्स में और हमारे जो कमर्शियली अवेलेबल नूडल्स हैं उनमें बहुत फ़र्क है। वो लोग फ़ौरन आटा बना के, फ़ौरन निकाल के
उसी वक्त
ताज़ा
सर्व
बनाते हैं, ताज़ा बॉयल करके ताज़ा खा लेते हैं वो नूडल्स, और ये जो हम जो बड़े सगीर में पैक्ड नूडल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो चलिए शुक्रिया। शहद की तरफ आते हैं, शहद जो है कहा भी गया है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज है
जी
मैदे के लिए,
जी
इसका बताएं।
बिल्कुल, शहद एक इनक्रेडिबल डाइट है, फुल डाइट है, और शहद मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन शहद का इस्तेमाल तरीके से हो तो वो और भी अच्छी बात है। जैसे कि अगर आप शहद को सिंपल बेकिंग के लिए, शहद को बिस्किट्स के ऊपर लगा कर या चिकन के ऊपर लगा कर रोस्ट कर लिया, आपने शहद को डिस्ट्रॉय कर दिया। शहद का बेहतरीन वक्त जो है इस्तेमाल का वो निहार मुंह है। आप सुबह जो है गर्म पानी में शहद को इस्तेमाल करें तो वो एक इंस्टेंट एनर्जी जो है वो आपको देगा, मैदे को, आंतड़ियों में तमाम फौरन एकदम उसको जो है अलर्ट कर देता है कि वो अपने एंजाइम रिलीज करें और मैदे को तैयार कर देता है कि वो खाने को हैंडल कर सके। तो शहद जो है वो निहार मुंह लेना बेहतरीन है, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, एंटी ऑक्सीडेंट है, आपकी जो है निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। तो ये तो सिर्फ हम तो सिर्फ देखते हैं कि शहद का इस्तेमाल है, लेकिन शहद के पीछे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, वो
जी
है इस बीज वैक्स है, यानी कि अगर आप शहद का छत्ता देखते हैं तो उसमें से बीज वैक्स है। बीज वैक्स भी जो है वो भी खाने की चीज़ है, उसको भी खाने में इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है और उन्होंने प्रूव किया है कि इसके अंदर रीजेनरेटिव पावर है। जितनी एलिमेंट्री केनाल है, मतलब ओरल कैविटी है, मैदा है, आंतड़ियां हैं, इसमें रीजेनरेशन सारी ज़िंदगी रहती है। लेकिन अगर हम बहुत हार्श मेडिसिंस खाते हैं या खुराक हमारा है तो वो रीजेनरेशन पावर जो है हमारे
कम
मैदे
हो
की वो
जाता है।
कम हो जाती है। तो जो बीज वैक्स है वो उसको बनाने में, उसको मेंटेन रखने में
जी
बेहतरीन है। हम रिसर्च हैज़ प्रूवन कि जो बच्चे, जो डेवलपिंग बच्चे होते हैं, अगर वो बीज वैक्स को चबाते हैं तो उनके दांत बेहतरीन निकलते हैं, उनमें प्लाक नहीं होता, जो पिलाहट हम देखते हैं दांतों
जी
में
जी जी
वो नहीं होती है। तो बीज वैक्स को भी खाने में इस्तेमाल करना चाहिए शहद के साथ साथ।
अच्छा, आपने कहा कि पानी के बारे में आपने बात की कि सुबह गर्म पानी के साथ पिया जाए शहद। पानी के बारे में, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा हो जाता है और आमतौर से ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में तो पसीना आता है तो हम पानी लेते हैं, और लेकिन ठंडक में ऐसा होता है कि हम कई मर्तबा जो है वॉशरूम जाते हैं लेकिन वो पानी जो है हम पीते नहीं है क्योंकि प्यास ही नहीं लगती, तो ये कितना नुकसानदेह होता है मेदे के
जी
लिए।
ये देखें, ये इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। हमारे पास अभी मतलब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हम बैठ नहीं सक रहे, लगता है फ्लू हो गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिहाइड्रेट है। डिहाइड्रेशन में मतलब सर्दी का मौसम है, बर्फबारी है, पानी नहीं पीते हैं, फिर पानी नहीं पीते तो वो जस्टिफाई करते हैं हम कहवा पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। जितनी आप चाय पियेंगे, जितना आप कॉफ़ी पियेंगे, उतना ज़्यादा यूरिनेशन है, वो पेशाब आवर है, तो उसमें फिर डिहाइड्रेशन और पानी की कमी हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फल, जो जूसी फ्रूट्स हैं, और आपके पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें, ऐसे फल खाएं जो कि पानी को जिस्म में रिटेन करें। अगर पानी की कमी है तो मैदे की तेजाबियत भी बढ़ती है, गुर्दों पे भी बोझ आता है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है।